हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 4 एंड 5 पार्ट 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 4 एंड 5। कृपया मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथक् विधाः। अनुवाद, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक एक गुण को बहुत ही डिटेल से बताया है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह और क्षमा के विषय में, और आज हम सत्य के विषय में पढ़ेंगे, सत्यम धमा। इनके विषय में आगे से जितना हम पढ़ सकेंगे फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। भगवान ने यहाँ पर टोटल 20 क्वालिटीज ऐसी बताई हैं जो भगवान कहते हैं जीवों की ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं, अर्थात यदि इन गुणों को विकसित करना है तो हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस बनना पड़ेगा, यदि बुद्धि को बढ़ाना है, यदि ज्ञान को, यदि संशयों से मुक्ति होनी करनी है अपनी, और यदि हृदय के अंदर क्षमा भाव बनाना है, सहष्णु बनना है, और यदि सत्य प्राप्त करना है, इंद्रियों को दमन करना है अथवा मन को कंट्रोल करना है, सुख दुख में विजय प्राप्त करनी है, जो भी हम चाहते हैं वो केवल कृष्ण की कृपा से संभव है। तो आज हम क्वालिटी नंबर 5 अर्थात सत्य को पढ़ेंगे। श्री प्रभुपाद जी के पर्पट में जहां तक हम पहले क्षमा तक पढ़ चुके उसके बाद सत्यम। देखिए आप सब क्या करो कि जहां तक आप पढ़ लो ना वहां पर निशान लगा दो ताकि नेक्स्ट डे आपको वहां से पढ़ने में सहजता हो। मिल गया सबको? पढ़िए मेरे साथ। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही सुंदर रीति से इन चंद लाइनों में सत्य को बहुत ही सुंदर रीति से बताया है कि वास्तव में सत्य का मतलब क्या है। जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य जो है वो हम किस लिए बोलें? ताकि दूसरों का लाभ हो। देखिए भक्तों, शास्त्र कहता है कि धर्म जो है उसके चार पैर हैं, चार पिलर्स हैं धर्म के। क्योंकि अगर हम धर्म नहीं करते हैं, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और उनमें से एक श्लोक में लिखा गया है आहार निद्रा वही मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्धरानाम, कि मनुष्य और पशुओं में आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीजें सिमिलर हैं। मनुष्य भी खाते हैं, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी सोते हैं, घर बनाते हैं और पशु भी ऐसा करते हैं। तो फिर यदि केवल मनुष्य भी वही कार्य करता रहे तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग? फिर मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? तब महाभारत उत्तर देती है धर्मो ही एको अधिक विशेष, एकमात्र धर्म ही विशेष है और यदि धर्म नहीं है तो धर्माविहीनो पशु ही समान, धर्म के बगैर तो मनुष्य पशु के ही समान है। तो धर्म क्या है? शास्त्र बताता है धर्म के चार पिलर्स हैं और वो कौन कौन से? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। हमारा जो धर्म का महल है वो इन चार पिलर्स पे टिका हुआ है और हमें उस धर्म के महल में रहने के लिए यानी पशुओं से मनुष्य तक अपने आप को बनाए रखने के लिए इन चार चीजों को, इन चार वस्तुओं को अपने जीवन में बनाए रखना है। क्या? सबसे पहले है तपस्या। तपस्या तभी संभव है जब हम जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है वो तपस्या नहीं कर सकता और जो तपस्या नहीं करता उसके धर्म का एक पिलर गिर जाता है। दूसरा है पवित्रता, और पवित्रता तभी संभव है जब हम अवैध संग नहीं करते। अवैध पुरुष और स्त्री का संग करने से पवित्रता नष्ट हो जाती है, अर्थात धर्म का दूसरा पिलर भी गिर जाता है। उसके बाद है दया। दया तभी संभव है जब तक जीव मांस आहार नहीं करता, और यदि जीव मांस आहार करता है उसके हृदय से दया समाप्त हो जाती है और उसके धर्म के महल का जो तीसरा पिलर है वो भी समाप्त हो जाता है। और आखिर में है सत्य। सत्य तभी संभव है जब तक जीव जुआ नहीं खेलता। यदि जीव जुआ खेलता है तो सत्य संभव नहीं है और उसके धर्म का जो महल है वो चकनाचूर हो जाता है यदि ये चारों पिलर गिर जाते हैं। जब सत्य होता था तो जीव जो है उनके जो ये धर्म का महल था ना उसके चारों पिलर्स जो है वो बिल्कुल सही होते थे, और जब त्रेता युग आया तो उसमें से एक पिलर टूट गया ना, जो पवित्रता समाप्त हो गई। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो दूसरा पिलर भी टूट गया यानी तपस्या भी समाप्त हो गई। और आज कलयुग में जीव के हृदय से दया तो समाप्त हो गई है, केवल सत्य संभव है। हम सत्य पर टिके रह सकते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सत्य को समझें, वेरी वेरी प्रैक्टिकल इन अवर डेली लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसी बात है सत्य जो कि हमें हर समय जो है उसका उपयोग करना है। जीवन में हर एक बात पर हमें सत्य बोलना है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए, एज इट इज बताया। अभी जो ये है, जैसे हमने अभी धर्म के चार चरण के विषय में जो डिस्कस किया वो वास्तव में इस भौतिक जगत में जो भी बोलते हैं वो भौतिक मतलब मेटेरियल जगत जो है उसी में आनंदित रहने के लिए किया जाता है। जैसे तपस्या की जाती है तो क्यों की जाती है कि मैं तपस्या करूंगा तो देवता मुझे बहुत सारा वैभव देंगे, सुविधाएं देंगे। अगर दया अगर की जाती है तो दया का क्या मतलब है? सिर्फ इतना कि हम दूसरों को है ना, मतलब सोशल वर्क करें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को कपड़े पहना दें, किसी को दवाई देकर दे दें, और इसी तरह से मतलब जो भी है वो मटेरियल उससे साफ। पवित्रता कैसे देखी जाती है? भाई देखने में साफ सुथरा रहता है, चार पांच दफाए ना नहा के आ जाता है ऐसा। और सत्य भी भौतिक तथ्य कि भाई ये सत्य है, कुछ बता दिया भौतिक लिहाज से। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? वास्तविक सत्य है इन समस्त वस्तुओं को किस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियसनेस में देखा जाए। हाईएस्ट ट्रुथ क्या है? श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों की भलाई के लिए प्रस्तुत किया जाए। वास्तव में भक्तों, इस भौतिक संसार में सब कोई झूठ पर टिका हुआ है। जो कुछ भी कृष्ण कॉन्शियसनेस को हटा दिया जाए तो पूरा संसार जो है वो इस झूठ पर टिका हुआ है। इवन लोग तपस्याएं करते हैं, जो भी करते हैं, उनको यही बताया जाता है कि आप ऐसा करोगे तो आप सुखी हो जाओगे। है ना, कुछ भी आप कमाओगे तो सुखी हो जाओगे, शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाओगे, बच्चे पैदा हो जाएंगे तो सुखी हो जाओगे, इसके पास चले जाओगे तो वो तुमको कुछ ऐसा तावीज करके दे देगा कि तुम सुखी हो जाओगे, या फिर ये कर लोगे तो सुखी हो जाओगे, या फिर ना ये नाम जप करोगे तो सुखी हो जाओगे, ये करोगे तो सुखी हो जाओगे। लेकिन भगवान बताते हैं दुखालयम अशाश्वतम, इस भौतिक जगत में कुछ सुख है ही नहीं। ये भौतिक जगत सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है, ये भौतिक जगत केवल दुख देने के लिए है। तो हमें इस जीव को ये उसके कल्याण के लिए बताना है कि तुम कुछ ऐसा करो जिसके द्वारा तुम इस भौतिक जगत से बाहर निकल सको, क्योंकि भौतिक जगत सुख प्राप्त करने, बाकी जितने भी संस्थाएं हैं वो यही बताते हैं यहाँ पर आ जाओ तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें कैंसर है तो कैंसर खत्म हो जाएगा, तुम्हें अगर है ना हार्ट है तो हार्ट वो सही हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाएगा, ये है तो वो नहीं। ये बताओ कि ये भौतिक जगत जो है वो है ही तुम्हें दुख देने के लिए, ये जो जितना भी आपको दुख मिल रहा है वो आपके कर्मों के अनुसार है। तो यदि आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके समस्त कर्मों के प्रतिफल समाप्त हो जाएंगे और आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण लोक की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, वही वास्तविक सत्य, मतलब हमारा वास्तविक मित्र वो है जो हमें सत्य से अवगत कराए। अगर कोई हमें सत्य के विषय में बताता है ना, वही हमारा वास्तविक मित्र है। लेकिन यदि हमारी बुद्धि जो है वो पवित्र नहीं होती है, उसको उस सत्य को समझ नहीं पाती है, तो हम उसी के खिलाफ हो जाते हैं। जैसे विभीषण, विभीषण सदैव रावण को बताता था, जब से वो सीता मैया को लेकर आया था तभी से रावण को कहता था, रावण तुमने सही नहीं किया। वो बड़े भाई थे रावण, लेकिन फिर भी विभीषण हमेशा बताते। देखिए यहाँ पर एक बात है, श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किन्तु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो ये कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ वही सत्य बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लगे, लेकिन सत्य तो कड़वा होता है, दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये पूर्ण सत्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो सत्य आप बोल रहे हो वो दूसरों को अच्छा लगे। शास्त्र भी कहता है सत्यम ब्रूयात प्रेमम ब्रूयात, सत्य कहो जो प्रिय लगे। प्रिय लगे इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है सत्य बोलो परंतु प्रेम से बोलो, यानी कि सत्य बोलने के समय भी आप ऐसे क्रूरता से नहीं बोल सकते, सत्य बोलने के समय भी आपको ऐसे हार्श शब्द नहीं बोलने चाहिए कि भाई हाँ कोई अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको हार्शली हरूभरू उसके हृदय को चोट पहुंचा के बताओ कि हाँ सत्य बोलो। सत्य जो है वो चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, सत्य इस तरह से बोलना चाहिए कि दूसरे को बात भी समझ में आ जाए और फिर उसको उसका हृदय भी ना दुखे, है ना। जैसे विभीषण सदैव बोलते थे कि देखिए भैया, क्योंकि सीता जो है वो श्री राम की पत्नी है तो हमें उनको वापस से लौटा देना चाहिए, हम आपको उनको नहीं रखना चाहिए, इस तरह से बताते थे। लेकिन रावण नहीं मानते थे, वो बार बार बताते थे लेकिन फिर भी रावण नहीं मानते थे। एक बार जब श्री राम की सेना सेतु बांध के समुद्र को लांग के आ गई, तब रावण को ऐसा लगा कि ये राम तो लंका में आ गया है, फिर भी उनके सारे जितने भी मंत्री थे, महामंत्री थे, तो भी कहने लगे लंकेश आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मानव हमारा क्या बिगाड़ देगा, आप लंकेश हो लंकेश, आपने कितना पराक्रम दिखाया है, आपने तो बहुत सारे देवताओं को भी पराजित कर दिया है, ये मानव आपके समक्ष कुछ नहीं है, आप इनसे भयभीत मत होइएगा, हम सब आपके साथ हैं, हम तो एक दिन में ही राम की पूरी जो सेना है उसको नाश कर देंगे। उस समय विभीषण ने कहा नहीं लंकेश नहीं, ये सब जो आपको बता रहे हैं वो सब गलत बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव में राम जो है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात भगवान का अवतार है। और अब जब श्री राम यहाँ पर आ गए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उनकी पत्नी लौटा दें और उनकी शरण में चले जाएं। उस समय रावण के पुत्र इंद्रजीत ने कहा, काकाश्री, इन सारी राक्षसों की सभा में एक केवल आप ही कायर उत्पन्न हो गए हो। हम राम को कभी भी राम की शरण में नहीं जाएंगे और आप क्या सलाह दे रहे हैं महाराज लंकेश को? क्या हम डरते हैं राम से? तब विभीषण ने कहा, इंद्रजीत, तुम अभी नादान बालक हो, तुम राम के पराक्रम को और राम के विषय में कुछ नहीं जानते, तो तुम्हें ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं। पहली बार विभीषण ने जोर से कहा, सत्य मना पहले कैसे बोलना चाहिए, पोलाइट तरीके से, प्रेम से सबको समझाना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, वो क्या करता है, जब कोई पेशेंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है, तो डायरेक्ट से उसकी सर्जरी नहीं करता, पहले क्या सोचता है कि नॉर्मल सी मेडिसिन देकर उसको सही कर दूं, फिर नॉर्मल की मेडिसिन से भी वो सही नहीं होता तो फिर वो इंजेक्शन लगाता है, फिर देखता है कि रोग बढ़ता जा रहा है, फिर वो सर्जरी करता है। उस तरह वास्तव में भक्तों को उसी तरह से करना चाहिए, प्रेम से बताना चाहिए कि वास्तव में सत्य की यहाँ श्री प्रभुपाद जी के अन्यों के लाभ के लिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि बस सत्य है तो बता दूं, कोई गलत कर रहा था वहां पर, किसी को मैंने ये देखा कि वो ये सही कार्य नहीं करना चाह रहा था, गलत कर रहा था और आके यहाँ पर बता दूं, भाई मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। किसी भी भक्त के विषय में बात कर दो, किसी भी लोगों के विषय में बात कर दो, इन बातों को सुनकर किसी का कोई लाभ होगा क्या? लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि सत्य केवल दूसरों के लाभ के लिए कहना चाहिए। उस समय विभीषण कहते हैं, मेघनाथ, तुम्हारा जो हट है वही इस लंका का विध्वंस कराएगा, बल्कि यहाँ पर तो तुम्हारा यह कर्तव्य है कि तुम अपने पिताश्री को समझाओ। तभी महाराज लंकेश रावण ने कहा, विभीषण, तुम इस समय केवल इसीलिए जीवित हो क्योंकि तुम मेरे भाई हो, अन्यथा तो अभी मैं तुम्हारा सरदर्द से अलग कर देता। तब विभीषण ने कहा कि आप क्यों कि मेरी बात नहीं समझ रहे हो, और यहाँ पर सब कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए अब मैं इस सभा का त्याग करता हूँ जहाँ पर भगवान की पत्नी का अपहरण करके यहाँ पर रखा गया है। अब यह पूरी लंका जो है वो डूबने वाली है, और जिस क्षण विभीषण लंका से गए उसी क्षण ये तय हो गया कि अब लंका तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जहाँ पर भगवान का भक्त नहीं होता वह जगह वीरान हो जाती है, वह जगह नष्ट हो जाती है। और उसी समय जो है विभीषण जो है वो भगवान राम की शरण में चले गए, और यह निश्चित हो गया कि लंका का सर्वनाश होने वाला है। तो उसी तरह से विदुर जी भी सदैव धृतराष्ट्र को बताते थे कि देखिए भ्राताश्री, हमें पांडवों को उनका राज्य लौटा देना चाहिए, पांडवों को उनका राज्य लौटाने में ही हस्तिनापुर की और हम सब की भलाई है, हम हमारे लिए हितकर यही है कि हम पांडवों का राज्य उनको वापस लौटा लें। वो हमेशा समझाते थे, मगर बहुत प्रेम से समझाते थे, मतलब क्रूरता से सत्य नहीं बोलते थे, प्रेम से समझाते थे। परंतु एक बार जब वो सभा के बीच में धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, उस समय दुर्योधन ने कहा कि पिताश्री, आप कुछ भी मत कहिएगा, मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा और ये युद्ध होकर रहेगा। तब विदुर जी ने कहा, देखिए भ्राताश्री, ये जो आपका पुत्र दुर्योधन है ना, यही विनाश का कारण बनेगा, इसलिए इस दुर्योधन को हस्तिनापुर से निकाल देना चाहिए। तब दुर्योधन ने कहा, काकाश्री, अपनी औकात देखिए, आपने आप एक दासी के पुत्र होकर मुझे मेरे महल से निकालना चाहते हो, निकल जाओ आप हमारे महल से। जबकि विदुर जी हमेशा सत्य बता रहे थे, मगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, और उसी के कारण उन घोड़ों का सर्वनाश हो गया। यानी कि अगर हमें क्या करना चाहिए, सत्य को सत्य की तरह से बता देना चाहिए। किसी को समझ में आती है बात, नहीं आती है, वो उन्हें देखना चाहिए। उन्होंने भी, विदुर जी ने भी उस सभा का त्याग कर दिया। मतलब कहने का अर्थ ये है कि सत्य बोलना इस बात का लाइसेंस नहीं है कि किसी को भी हम हार्ट कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। सत्य को बताना चाहिए, परंतु प्रेम से बताना चाहिए, और तभी बताना चाहिए जब उनके लिए लाभदायक हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, सही सही बताना चाहिए, लेकिन उनके लाभ के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु एक जो थे, जब यहाँ भौतिक जगत में होते थे ना, चैतन्य महाप्रभु को मायावादी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। मायावादी फिलोसफी की बहुत ज्यादा वो मतलब अच्छा नहीं लगता था उनको, बहुत क्रोध आता था उनके विषय में ये सोचकर। लेकिन जब वो मायावादियों की सभा में गए, जहां पर वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती जी बैठे हुए थे, तो उस समय जाते ही चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं कहा तुम सब मायावादी हो, स्टूपिड हो, ये हो, वो कुछ नहीं कहा। आके आराम से शांत होकर बिल्कुल जहाँ लास्ट में शूज रखते ना, वहां पर जाके बैठ गए। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, क्योंकि महाप्रभु के मुख से इतना तेज निकल रहा था, इतना थे, तभी बोला, नहीं महाप्रभु नहीं, आप ऊपर आइए, आप यहाँ पर नहीं बैठिए। उनको बहुत जबरदस्ती ऊपर लेके गए, और फिर महाप्रभु ने बहुत अपना सिद्धांत बताया, दृढ़ता से बताया, परंतु एकदम प्रेम से, प्यार से, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सिद्धांत को बताया। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है, आजकल क्या है, हम सत्य को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, है ना। बिल्कुल छोटी छोटी बात में, जो कि बिल्कुल मतलब जरूरी नहीं होता, जहां पर झूठ बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, हम वहां पर भी झूठ बोलते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में फोन आ जाती है, बोलते कहाँ हो तुम, तो हम कुछ गलत जगह बता देते कि हम मार्केट में होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि नहीं घर पे हैं, या फिर कुछ ऐसा। या फिर कहीं पर पहुंचने वाले होते हैं, कोई फोन करता है, भाई 8 बज गए अभी तक नहीं आए, आपको पहुंचना, तो बोला हाँ बस पहुंचने वाला हूँ, यहाँ पर पहुंच गया हूँ, 10 मिनट का वॉक बाकी, ट्रैफिक में फंस गया हूँ, या फिर कुछ ऐसा। अगर हम सत्य बता देंगे तो क्या वो मोबाइल से बाहर निकल के गोली मारेगा या थप्पड़ मारेगा? मतलब जहां पर जरूरी नहीं होता है, वहां पर भी हम झूठ बोलना, झूठ का सहारा लेते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है, क्या प्रयोजन है उस बात का। लेट हो गए तो हो गए, बोल देते हैं भाई हाँ थोड़ा लेट हो गए, बस पहुंच रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में झूठ तब बोला जा सकता है जब वो दूसरों के भले के लिए हो। मतलब किसी की मृत्यु अगर होने वाली होती है, जैसे अगर किसी को मृत्यु से बचाया जा सकता है ना, तभी शास्त्र जो है वो झूठ बोलने की परमिशन देता है। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है, और अगर कुछ थोड़ा सा झूठ बोलकर उसको बचाया जा सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है, तो झूठ बोला जा सकता है। वो कैसे? वो भी इसलिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए झूठ भी बोलते ना, तो वो भी सत्य से बहुत बढ़कर हो जाता है। जैसे एक बार जब युद्ध हो रहा था, उस समय जब द्रोणाचार्य सेनापति बने थे, तब वो एक दिन में 50,000 सैनिकों का वध करते थे विदाउट मर्सी, एक के बाद एक, एक के बाद, मतलब शाम ढलते ढलते 50,000 सैनिक मार देते थे। तब कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, अगर इस तरह से युद्ध चलता रहा तो 2 दिन में ही सफा हो जाएगा सारा, हम हार जाएंगे। तो अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि द्रोणाचार्य जो है वो इस तरह से युद्ध ना करें, क्योंकि यदि इसी तरह से युद्ध करते रहे फिर तो हमारी सारी सेना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगी। तो तब अर्जुन ने कहा कि मुझे गुरु महाराज जब तक लड़ाई कर रहे हैं ना, तब तक उनको मारना संभव नहीं है। कृष्ण ने कहा फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो लड़ाई करना बंद करे, मतलब अपना जो धनुष बाण है वो नीचे रख दे। जब वो नीचे रख देंगे तो फिर उनको मारना संभव हो जाएगा। लेकिन वो इतने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे कि संभव ही नहीं था कि वो अपना धनुष बाण नीचे रख दे। तब कृष्ण ने उक्ति सोची, बोले देखो एक हाथी है, उसका नाम है अश्वत्थामा। यदि हम उसका वध कर देंगे और द्रोणाचार्य को ये कहेंगे कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और पुत्र की मृत्यु के विषय में सुनकर तो वो दुखी हो जाएंगे, तो फिर वो अपने हथियार रख देंगे। तब अर्जुन ने कहा मैं तो गुरु महाराज से झूठ नहीं बोल सकता माधव। भीम ने कहा क्यों नहीं बोल सकते, ये वही द्रोणाचार्य है ना जो अभिमन्यु की मृत्यु के समय उन साथ साथ महारथियों के साथ साथ उस बच्चे पर आक्रमण कर रहा था, बोलेंगे झूठ। तभी कृष्ण ने बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज को समझाया कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, अगर द्रोणाचार्य इसी तरह से युद्ध करते रहे तो हम कभी भी विजयी नहीं होंगे, तो फिर उनको युद्ध से रोकने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो कृष्ण जो है वो प्रीच कर रहे थे कि झूठ बोलना कितना आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे सैनिक जो हैं वो फिजूल में मरे जा रहे हैं, बाहर इतने सारे निरपराध सैनिकों का वध हो रहा है, तो आपको उनके लिए एक बार झूठ बोलना पड़ेगा। और द्रोणाचार्य जो है वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा, वो अवश्य आएगा आपसे पूछने के लिए, और आप उन्हें बताना कि अश्वत्थामा मारा गया। तो और ये झूठ कैसे होगा, क्योंकि हाथी को मार ही रहे ना, उसका तो नाम अश्वत्थामा ही है। तो भीम ने जोरदार गदा से उस अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला। तब और भीम जो है ना वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार गया, हाँ अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, इसे जोर जोर से द्रोणाचार्य के सामने जाकर चिल्लाने लगा। तब द्रोणाचार्य ने सोचा कि भीम तो है ना कभी कभी कैसे प्रतिज्ञा ले लेता है और इस तरह से क्रोध में आके कुछ भी बोल देता है, तो हो सकता है भीम जो है वो ऐसे ही बोल रहा हो झूठ झूठ में, भीम की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए मुझे। और उससे पहले पता है बहुत सारे आकाश में सेजस जो संत होते हैं ना वो आए थे उनको समझाने के लिए द्रोणाचार्य को कि आप इस तरह से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप साधारण से जो जितने सैनिक हैं उन पर आप इतने बड़े बड़े अस्त्र छोड़ रहे हो, उन जो जिस कैटेगरी का सैनिक होता है उसके ऊपर वैसा ही अस्त्र छोड़ना चाहिए, आप इतने भयानक अस्त्र छोड़ रहे हो तो उनको उनका तोड़ ही नहीं पता है, तो आप कैसे ऐसे कर सकते हो। द्रोणाचार्य ने उनकी बात भी नहीं मानी थी और फिर भी वो युद्ध कर रहे थे। फिर द्रोणाचार्य युधिष्ठिर महाराज के पास गए और युधिष्ठिर महाराज से पूछा क्या अश्वत्थामा मर गया है। तब युधिष्ठिर महाराज ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कुंजरोवा। लेकिन अश्वत्थामा हतो यानी अश्वत्थामा मारे गए हैं ये तो है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मनुष्य है या कोई हाथी है, मारा गया अश्वत्थामा। यानी जीवन में पहली बार युधिष्ठिर महाराज ने झूठ बोला। युधिष्ठिर महाराज कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और आज पहली बार झूठ बोला, वो किसके लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। आपको एक हैरत की बात बताऊं कि युधिष्ठिर महाराज के सत्य के प्रताप से जो उनका रथ था वो पृथ्वी से थोड़ा ऊपर होके उड़ता था, मतलब जैसे हम पृथ्वी पे चलते हैं ना ऐसे चलता नहीं था, आम रथ कैसे रोड के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जम के चलते नहीं, ऊपर होके ऐसे फ्लाई करता था, थोड़ा ऊपर होता था। और सब जानते थे कि युधिष्ठिर महाराज का रथ इसलिए ऊपर चल रहा है क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। और जैसे उन्होंने ऐसा बोला कि अश्वत्थामा हतोवा नरो, तभी तक वो सही था, लेकिन जब बोला नरोवा कुंजरोवा तब उनका रथ नीचे आ गया। मतलब उनको ये बोलने की क्या जरूरत थी, जब कृष्ण ने बोल दिया कि अश्वत्थामा मारा गया तो अश्वत्थामा मारा गया। उनको भगवान के लिए भी, मतलब वो भगवान के लिए भी अपने दिल पर बहुत ज्यादा उनको भार हो रहा था कि मैं कैसे झूठ बोलूं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि वो पता नहीं हाथी था या मनुष्य था, तो उनका रथ नीचे आ गया। रथ नीचे इसलिए नहीं आया कि उन्होंने झूठ बोला, बल्कि इसलिए आया, शास्त्र कहता है कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के बताए हुए झूठ को झूठ बोला। लेकिन एक बार जो कृष्ण ने कह दिया वही सत्य है, वही परम सत्य है, क्योंकि सत्यम परम धीमहि। कृष्ण ने जो कह दिया वही सत्य है, कृष्ण को प्रसन्न करता है जो कार्य वही सत्य है। परंतु आज हमें युधिष्ठिर महाराज की तरह डायरेक्ट से कृष्ण इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि तुम ऐसे बोलो, हम अपनी मन की बात को ये कहकर नहीं कहते। कभी कभी लोग इतना अपराध करते हैं और ऐसे कहते हैं कि हो सकता है भगवान ये चाहते हो कि मैं अपराध करूं। वास्तव में भगवान आपसे कभी भी अपराध करवाना नहीं चाहते हैं। तो यदि कोई शुद्ध वैष्णव, कोई गुरु हमें कोई संकेत करते हैं कि भाई यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं जो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसमें किसी की भी इंद्र तृप्ति नहीं होती है, तब यदि कोई कार्य किया जाता है तो संभव है कि मतलब वो गलत नहीं हो। लेकिन साधारण स्थिति में, साधारण परिस्थिति में हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वास्तव में सत्य का मतलब होता है भगवान, सत्यम परम धीमहि। सत्य जो है वो साक्षात कृष्ण है, इसके अतिरिक्त और कुछ सत्य नहीं है। तो भक्तों को सदैव भगवान के विषय में चर्चा करनी चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का, भगवान के शब्दों का, भगवान की लीलाओं का बखान करना चाहिए। यही परम सत्य है। और क्योंकि श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक का हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। और सबसे बड़ा लोक का हित क्या है? जीवों को भगवान के विषय में बताना। एक बार श्री प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि स्वामी जी आप इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, इतने बड़े बड़े ये प्रसाद के आयोजन करते हो, क्या फायदा इसका? इससे ज्यादा बेहतर है कि आप हॉस्पिटल्स बनवाओ, हॉस्पिटल्स में लोगों को ट्रीटमेंट दो, भूखों को खाना खिलाओ। तब श्री प्रभुपाद जी ने कहा क्या लाभ होगा इसका? जिनका हम इलाज कराएंगे, जिनको ट्रीटमेंट देंगे, क्या वो दोबारा कभी बीमार नहीं होंगे? जिनको खाना खिलाएंगे, क्या दोबारा कभी भी उन्हें भूख नहीं लगेगी? ये जो मंदिर है ना, वो आध्यात्मिक हॉस्पिटल्स हैं। एक बार जो जीव भगवान के करीब आ जाता है, भगवान को नतमस्तक हो जाता है, भगवान के पवित्र नाम का जप कर लेता है, भगवान के दर्शन कर लेता है, फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं, उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि कोई दुख भोगना नहीं पड़ता है। इसलिए वास्तविक कल्याण क्या है? जीव को भगवान के विषय में बताना, भगवान के पवित्र नाम के विषय में बताना, भगवान के इन उपदेशों का उनको प्रचार करना, इसी से जीव का हित होगा और यही परम सत्य है। तो हमें सदैव भगवान के विषय में सबको बताना चाहिए, यही सत्य है। और सत्य के बाद है दमह। दमह श्री प्रभुपाद जी देखिए उनके पपट में जो सेकंड पैरा, जो न्यू पैरा स्टार्ट हो रहा है उसमें देखिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दमह का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए, इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय हो। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताई कि दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। अब इंद्रियां हैं, उनको उनका विषय तो चाहिए, आंखें हैं तो उनको कुछ न कुछ देखना पड़ेगा, नेत्र हैं सॉरी मुख है तो कुछ न कुछ खाना अथवा बोलना पड़ेगा, कान है तो कुछ न कुछ श्रवण करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब है कुछ, जैसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारी इंद्रियों का दमन करके बैठ जाओ उसको दमा कहते हैं, नहीं। सारी इंद्रियों को, वास्तव में इंद्रियों को हम 100% कभी भी उनके विषयों से रोक नहीं सकते। लेकिन श्री प्रभुपाल जी आगे कहते हैं, किंतु अनावश्यक अनावश्यक का इंद्रिय भोग जो है वो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक बनेगा। अनावश्यक का मतलब यहाँ पर श्री प्रभुपाल जी लिख रहे हैं कि जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक नहीं है, उन इंद्रिय भोग को हमें निषेध करना चाहिए। यहाँ पर इससे ये समझ सकते हैं हम कि कुछ इंद्रिय भोग जो है वो आवश्यक है, वो उसके लिए ना मना नहीं किया गया। आवश्यक मतलब खाना जो है वो आवश्यक है जीव को, ताकि आत्मा जो है वो शरीर के अंदर रह रही है, और शरीर स्वस्थ होगा तभी आत्मा अपने गोल को, अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार आवश्यक है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लो जानवरों की तरह। हमारे लिए आवश्यक क्या है, भगवान बताते हैं 3.13 में, यज्ञ शिष्टाश्न संतो मुच्यंते सर्व केल विषय भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्मकारण। यानी कि भगवान को अर्पण करने के बाद जो खाया जाता है वो जो है अन्न खाया जा सकता है, लेकिन यदि आप केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनाज पकाते हो ते भुंजते ते त्वगम पापा, वो बहुत बहुत पाप को भोगेंगे अगर केवल इंद्रियों के प्रसन्नता को ही ध्यान में रखकर आप इंद्रिय। यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि इंद्रियां जो हैं उनको उनका विषय देना है, परंतु कैसे देना है, केवल कृष्ण को संतुष्ट करने के भाव से। यदि हम ये सोचकर अब आहार करते हैं कि कृष्ण को दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाने से मेरी इंद्रियों में शक्ति आएगी और तभी मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपना आगे अपने जीवन के गोल को प्राप्त कर सकूंगा, उसी तरह से कोई भी बात श्रवण नहीं करनी चाहिए, केवल वही शब्द जो कि हमें आध्यात्मिक उन्नति में आगे उठा रहे हैं, भगवान की कथा, भक्तों के चरित्र, भगवान की लीलाओं इत्यादि को श्रवण करना चाहिए। मुख से केवल कृष्ण के विषय में बोलना चाहिए, कृष्ण के पवित्र नाम का, दूसरों के विषय में बात करके व्यर्थ का अपनी इंद्रियों को ये आवश्यक नहीं है वो इंद्रिय भोग नहीं देना चाहिए। भागवत महापुराण में अत्यंत ही सुंदर बताया गया, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयावता। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, काम का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, नहीं। लाभो जीवे तयावता, काम केवल इतना आवश्यक है कि मैं जी सकूं, और जीऊं क्यों, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो तस्यह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीने का केवल एक ही मकसद है। ये जो मनुष्य जन्म हमें मिला है ना, वो बड़ी कठिनाइयों से मिला है। 84 लाख योनियों को क्रॉस करने के बाद 100 साल के लिए हम इस मनुष्य जन्म में आते हैं, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि हम आज हम 60 साल जीते हैं या 70 साल जीते हैं, कुछ पता नहीं। और ये केवल इसी जन्म में संभव है कि हम दोबारा 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसने से बच सकें। केवल ये मनुष्य जीवन में ही संभव है कि हम ऐसा कोई कार्य करें जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा का कल्याण करें, हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें, हम जन्म मरण के चक्कर से बच सकें। तो बहुत सोच समझ कर हमें एक एक कदम, इस मनुष्य जन्म का एक एक क्षण जो है वो बहुत ज्यादा कीमती है। जब मृत्यु आने वाली होती है ना, तो डॉक्टर को यदि आप कहोगे ना कि मैं अपने जीवन की सारी कमाई दे देता हूँ, परंतु एक घंटा मुझे और दे दो, मैं अभी नहीं मरना चाहता,
तो क्या बड़े से बड़ा डॉक्टर उस मृत्यु के समय आपको एक घंटा दे सकता है? नहीं, जितनी सांसें आप लेकर आए हो उतनी सांसें मिलेंगी। आप अपने जीवन की पूरी कमाई जो कि आपने भगवान की भक्ति ना करके धन अर्जित करने में जो समय वेस्ट कर दिया, वो सारा का सारा धन, वो सारा का सारा ज्ञान भी आपके जीवन के एक घंटे को नहीं बढ़ा सकता। तो कितना महत्वपूर्ण है ये समय। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इस समय का उपयोग कृष्ण सेवा में कर सकें। लेकिन आज का मनुष्य केवल इंद्रिय भोग के विषय में ही सोचता रहता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाऊं, ज्यादा से ज्यादा घूमूं, ज्यादा से ज्यादा धन अर्जित करूं, ज्यादा से ज्यादा अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करूं। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दमः, दम यानी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में नहीं लगाना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रियों की समुचित आवश्यकता की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। यानी कि सारी की सारी इंद्रिय भोग, जैसे हमारे जो गोस्वामी हैं, हमारे जो आचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा बहुत ही तीव्र वैराग्य का प्रदर्शन किया है। जैसे हम देखते हैं षट गोस्वामियों में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, ये जो वृंदावन में रहते थे तो ऐसा नहीं था कि वो बना के बहुत सारे अपने लिए व्यंजन बनाते थे, खाते थे। नहीं, सनातन गोस्वामी आटे का एक बाटा लेकर उसको आग से सेकते थे, उसमें नमक भी नहीं डालते थे और भगवान को खिला के और खुद खाते थे। भगवान ने बोला कि सनातन इसमें नमक क्यों नहीं डालते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान को कहा, मैं यहाँ पर साधना करने के लिए आया हूँ, मुझे बहुत काम होता है इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। यदि आज तुम नमक मांग रहे हो, कल तुम घी मांगोगे और उसके बाद देना छप्पन भोग मांगोगे, तो फिर मेरी साधना का क्या होगा? मतलब जीव को ये देखना है कि मैं कैसे अपनी साधना को परफेक्ट कर सकूं। रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि बहुत ही अमीर रिच फैमिली से थे, और जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके पिताजी ने उन्हें बहुत धन भेजा था, दिया करते थे और भेजा करते थे कि मेरा बेटा जो है वो इतने लाड़ों से पला है, तो उसको धन दूं मैं, वहां पर क्या खाएगा क्या करेगा। तो वो क्या करते थे, शुरू शुरू में उस धन से बहुत सारा अनाज इत्यादि खरीदते थे, महाप्रभु को भी खिलाते थे और सारे जितने दूसरे मतलब गौर भक्तवृंद है उनको खिलाते थे। बाद में उनको ऐसा लगा कि ये तो इंद्रिय भूख है, मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। फिर उन्होंने वो धन लेना स्वीकार नहीं किया, केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद खाते थे, और जो प्रसाद खा लेते थे उसके बाद कुछ समय के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये मैं प्रसाद इतना खा रहा हूँ, मेरे मन में केवल इतना होता है अभी प्रसाद आएगा, अभी हम खाएंगे, तो ये तो इंद्रिय भोग है, तो मुझे इसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जगन्नाथ जी के द्वार के बाहर खड़े रहते थे, और जैसे जो भिखारी खड़े होते ना उनकी तरह खड़ा होता था, किसी से मांगते नहीं थे, और जो भी उनके हाथ में देखे जाते थे तो वो खा लेते थे। फिर उनको ऐसा लगा कि ये तो वेश्यावृत्ति है, जो भी आता है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ दे देगा, इससे तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति होगी नहीं। फिर उन्होंने वहां से लेना भी बंद कर दिया। देखिए भक्तों, इतने धनी परिवार का की संतान रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने पता है क्या किया बाद में, जो अनाज जगन्नाथ जी का जो प्रसाद होता था वो सब मंडी में बेच दिया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद जब वो प्रसाद कोई लेता नहीं था, बदबू हो जाती थी, खराब हो जाता था, तो वो पशुओं को डाल दिया जाता था, और पशुओं को डाल दिया जाता था और जो पशु भी नहीं खाते थे, मतलब इतना सड़ा हुआ होता था जो पशु भी नहीं खाते थे, रघुनाथ दास उसको उठाते थे और उसको पानी से धो के फिर उसको खाते थे। हमारे लिए इस तरह का वैराग्य संभव नहीं है, परंतु हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि वो वस्तु को ना स्वीकार करें जो भगवान को अर्पण ना की गई हो। हम इतना तो कर सकते हैं कि जो भी बनाए पहले कृष्ण को खिलाएं, उसके बाद हम स्वीकार करें। कोई भी वस्तु बनाने के समय हम ये तो सोच सकते हैं ना कि हम कृष्ण के लिए बना रहे हैं। बस हो गया, इतना ही करना है आज के इस, और वो भी इसलिए नहीं कि कृष्ण को हमारे भोज्य पदार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में वो भोज्य पदार्थ हमारे लिए अपराध बन जाता है। मुंजते ते त्वगम पापा, और अपराध के कारण हमें दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए जो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, अपने इंद्रियों से हम जो कोई भी कार्य करते हैं वो केवल और केवल कृष्ण की प्रशंसा से, प्रशंसा के लिए करना चाहिए, अन्यथा वही कर्म हमें बारम्बार जन्म मृत्यु के बंधन में बांधेगा, कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे। तो और इस कर्मों के बंधन से बचने का केवल एक ही उपाय है कि आप अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य करते हो वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करो। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंद्रियां भगवान की हैं। यह शरीर भगवान का, भगवान की शक्ति है, भगवान की अपरा प्रकृति है। तो इस ये क्योंकि भगवान की शक्ति है तो भगवान की शक्ति के द्वारा भगवान की सेवा होनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं सर्वोपाधि विनुर्मुक्त तत्प्रवर्तेन निर्मलम। जब हम सारी उपाधियों से विनुर्मुक्त हो जाते हैं तभी निर्मल होते हैं। उपाधियां क्या है जानते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ये सब उपाधियां हैं जो हमारे शरीर को मिली हुई हैं। लेकिन ये सारी उपाधियों से जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हम निर्मल हो जाते हैं। फिर क्या होते, फिर क्या करते हैं? हम केवल दास बन जाते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और उन इन जो ऋषिकेश, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और एश मतलब स्वामी, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी को ऋषिकेश सेवनम, यानी कि इन इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा यदि की जाती है तभी इन इंद्रियों को हम संतुष्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इंद्रियों को वश में करने का और कोई तरीका नहीं है। भगवान कहते हैं 2.60 में, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवम् मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय, हे कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यो साधारण व्यक्ति की बात छोड़ो, विपश्चित कहते हैं जो बहुत ज्यादा विवेकी व्यक्ति होता है, वो भी इंद्रियाणि प्रमाथीन, इंद्रियों के द्वारा उत्तेजित हो जाती है उसकी इंद्रियां, और हरन्ति प्रसवम् मनः, और जब इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं तो उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। ये हम सबका अनुभव किया हुआ है। से भगवान ने कहा इंद्रियां इतनी प्रबल हैं तथा इतनी वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो चाहता है कि मैं अपनी इंद्रियों को वश में करूं, उसके भी मन को वो बहुत ही जोर से, बहुत ही बल से हरण कर लेती हैं। तो फिर मानो अर्जुन पूछे कि फिर मैं क्या करूं, ऐसा तो फिर होगा ना मेरे साथ भी, क्योंकि इंद्रियां बहुत ज्यादा बलवान है। तब भगवान कहते हैं हाँ, मगर एक तरीका है उनको कंट्रोल करने का, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर भगवान उपाय बताते हैं 2.61 में। भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा वशे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इन सबको, जितनी सारी इंद्रियां हैं, आंख कान नाक त्वचा रसना, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां, उन सब को संयम्य वश में कैसे करो? युक्त आसीत मत परा, इनको युक्त करो, इनको मुझ में स्थिर कर दो, मुझ में लगाओ, तो क्या होगा? तभी तुम्हारी इंद्रियां जो हैं वो वशे ही इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, और इस तरह से तुम्हारी सारी इंद्रियां जो हैं वो वश में हो जाएंगी।
और तुम स्थिर बुद्धि वाले होगे। मतलब सारी इंद्रियों को भगवान ने क्या सुंदर बता, युक्त आसीत मत पर। इंद्रियों को केवल मुझ में लगाना है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करना है, तब तुम इंद्रियों के इस वेग को रोक सकोगे। और शिला प्रभुपाद जी अक्सर अपने पापड में परम साधु तथा भक्त यमुना आचार्य के एक व्यवहारिक उदाहरण, एक जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल उदाहरण के विषय में बताते हैं। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे नव नव रस धामं युध्यतं ब्रन्तुमासि तदवधि बत नारि संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविन्दे। बहुत सुंदर कि जब से यदवधि मम चेत, जब से मेरा मन कृष्ण पदारविंदे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के ऊपर आसक्त हो गया है, मन जो है मन का भंवरा कृष्ण के चरण कमल पर जब आसीत हो गया है, कृष्ण के चरण कमल की ओर जब आकर्षित हो गया है, तो ऐसा नहीं है। वैसे भंवरे का क्या स्वभाव है, एक फूल से रस चूस लेता है और वहां से जब उसे ऐसा अनुभव होता है कि अब यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है तो दूसरे फूल की ओर जाता है। परंतु कृष्ण के चरणों में वो रस है, नव नव रस धामं युध्यतं ब्रन्तु, एक क्षण में वो रस का आस्वादन बढ़ता है। कभी कृष्ण के दर्शन का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण की कथाओं का, कृष्ण के स्मरण का रस कम नहीं होता। इसलिए मन रूपी भंवरा जब कृष्ण के चरणों में फिक्स हो जाता है तो फिर एक एक क्षण में नव नव रस और भी नया नया आस्वादन होता है उसको। और आगे कहते हैं तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाणी, और उस समय यदि भूले से मुझे इंद्रिय भोग की कोई और इच्छा याद आ जाती है तो भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च, मेरा दिल करता है थूक दूं, मैं मुंह ऐसा खराब हो जाता है कि क्या मैं इतने आनंद के समय, जैसे हम बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद खा रहे होते हैं, बहुत सारे व्यंजन हमारे सामने रखे हों और अगर सामने कोई गंदा कोई जानवर हो जिसको बहुत गंदा जख्म हो तो देखकर हमें कैसा लगे, थू अभी हम खाना खा रहे थे गंदी चीज देख ली। तो उसी तरह जब हम कृष्ण के चरणों की ओर आकर्षित हो जाते हैं तो फिर हमें भौतिक जो इंद्रिय सुख होता है वो बिल्कुल गटर में गिरे हुए गंदगी की जैसा लगने लगता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर बताया गया, सवै मन कृष्ण पदा रविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणा नु वर्णने करौ हरे मंदिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकारा च्युत सत्कथोदये मुकुंदलिंगा लयदर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रस्पर्शोग संगमं ग्राणं च तत्पादसरो जसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां पदर्पिते पादौ हरिक्षेत्रपदा नु समर्पणे शिरो ऋषिकेशपदा विवन्दने कामं च दासे न तु कामकाम्यया यथोत् तम श्लोक जना श्रयारती सवै मन कृष्ण पदारविंदयो। उनका मन राजा अम्बरीश के विषय में बताते हैं श्रीमद् भागवतम 9:4, 18 और 20 में बताते हैं कि राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर दिया था। सवै मन कृष्ण पदारविंदय और वाचांसी जो उनकी जुबान थी वैकुंठ गुणानुगान अपने जीवा से, अपनी वाणी से वैकुंठ यानी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगे रहते थे। और करो हरेर मंदिर अमार्जने, करो कहते हैं हाथों से, हाथों से अपने भगवान के मंदिर को साफ करने में लगे रहते थे। और श्रुतिम चकारा च्युत सत कथो यदि, और कारणों से भगवान की कथाओं को श्रवण करते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृष्ट, दृश्यो कहते हैं नेत्रों को, अपने नेत्रों से भगवान के दर्शन करते थे। तद भृत्य गातर स्पर्शे गसमम, यानी अपने शरीर को भक्तों के चरणों को स्पर्श करने में लगाते। ग्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे, ग्राणम यानी अपने नासिका को भगवान के चरणों में रखे हुए फूलों को की सुगंध लेने में लगाते थे। और श्रीमत तुलसिया रसना पर तदर्पिता, और जो भगवान के चरणों पर तुलसी महारानी होती थी उनसे अपनी जीवा को संतुष्ट करते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, अपने चरणों से वो जहाँ भगवान के मंदिर होते थे उन स्थानों की यात्रा करने में जाते थे। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, शिर यानी अपने सर को भगवान ऋषिकेश के नमस्कार करने में, उनके चरणों को पदाभिवंदने उनका वंदन करने में लगाते थे। और बहुत ही सुंदर आगे कहते हैं, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, मतलब इच्छाएं जो है उनको, इच्छा को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कामम च दास्ये न तु काम काम्यया, इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं की को पूरा करने में लगाते थे। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारथी, केवल भगवान को प्रसन्न करने की एकमात्र इच्छा होती है भगवान के भक्तों की। और जब भक्त भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करता है अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, तो क्योंकि जब सारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में लगी रहती हैं, तो अवश्य उनका उन पर कंट्रोल कर पाना संभव है। वरना तो इंद्रियां जो हैं वो विषैले सर्प की तरह है। देखो, इंद्रियों के विषयों को वैसे कहा जाता है विषय, विष का मतलब होता है जहर। इंद्रियों को यदि हम उनके इनके ऑब्जेक्ट्स देते हैं ना, तो समझो उनको उनके जैसे सर्प को अगर दूध पिलाया जाता है तो क्या होता है, वो और भी ज्यादा जहरीला हो जाता है, उसके अंदर बल आ जाता है। उसी तरह इंद्रियों को यदि उनका विषय दिया जाता है तो और भी ज्यादा जहरीले हो जाते हैं और हमारे मन को जो है वो भटका सकती हैं। लेकिन इंद्रियों को यदि हम भगवान की ओर मोड़ देते हैं तो फिर वो हमारे मन को कभी भी गलत रास्ते की ओर नहीं ले जाएंगे। और जब मन सही रास्ते पे होगा तो बुद्धि सही रास्ते पर होगी, और जब बुद्धि सही रास्ते पर होगी तो आत्मा का कल्याण अवश्य होगा। इसके बाद है क्षमा। क्षमा का मतलब होता है मन को कंट्रोल करना। बहुत समय हो गया, मैंने सोचा था इसको भी कर लेंगे, परंतु इसको कल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं।